अब पूरी फैमिली एक साथ श्री राम कथा का आनंद ले सकती है सिर्फ चाइम्स मोबाइल ऐप पर। जानिए श्री राम के बचपन से लेकर दशानन वध तक का सफर। सरल रामायण घर के सभी सदस्यों के लिए। आज ही डाउनलोड करें चाइम्स मोबाइल ऐप एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।
वर्ल्ड के सबसे बड़े देशों में से एक है इंडिया, पर इसको महान बनाती है इसकी हिस्ट्री और उससे जुड़े लोग जिन्होंने अपने अपने तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाया। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ फेमस इंडियंस की जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इंडिया के फर्स्ट नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, इनका नाम सुनते ही एक अलग ही कामनेस, सेरेनिटी और पीस की फीलिंग आती है। कानों में रवींद्र संगीत घुलने लगता है और जब इनके बारे में और ज्यादा जानते हैं तब पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंडियन के बारे में जिन्होंने अपने लिटरेचर और आर्ट के जरिए इंडिया को एक ऐसा गिफ्ट दिया है कि हम इंटरनेशनल पेडेस्ट्रल पर प्राइड के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी वो गाना जो हमारी कंट्री की पहचान है, हमारी कंट्री का नेशनल एंथम, जन गण मन। रवींद्रनाथ टैगोर जो कि एक पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर और पेंटर थे, उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और वो एक फिलोसोफर और रिफॉर्मर थे। उनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। रवींद्रनाथ अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनके पिताजी ने उन्हें और उनके सिबलिंग्स को एक ऐसा माहौल दिया था कि लिटरेचर और म्यूजिक की तरफ उनका रुझान होना तय था। जब गुरुदेव काफी छोटे थे तब उनकी माताजी के स्वर्गवास के बाद उन्हें ज्यादातर सर्वेंट्स ने ही रेस किया था। वो फिजिकल स्कूल नहीं गए बल्कि उनके पिताजी ने फ्री फ्लो ऑफ एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था। उनके बड़े भाई हेमेंद्रनाथ ने उन्हें पढ़ाया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक तरह से। वो उन्हें स्विमिंग करवाते, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करवाते, जिम्नास्टिक्स, जूडो और रेसलिंग में ट्रेन करते और साथ ही घर पर ही उन्हें ड्राइंग, एनाटॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथ्स, संस्कृत और इंग्लिश के लेसन देते। जब वो 11 साल के हुए तब वो अपने पिताजी के साथ कलकत्ता छोड़ के शांति निकेतन में रहने लगे और वहां उन्होंने अपने लिखने की जर्नी को स्टार्ट किया। 1873 में एक महीने के लिए वो अमृतसर भी रहे और वहां पर रहते हुए उन्होंने 6 पोम्स लिखी सिखिज्म पर। और वहां से लौटने के बाद 1877 तक उन्होंने अपने कई रिटन वर्क्स को कंप्लीट किया। 1878 में उनके पिताजी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया लॉ पढ़ने के लिए, लेकिन लॉ पढ़ने के बजाय उन्हें शेक्सपियर और दूसरे प्लेराइट्स के वर्क्स को पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये सब पढ़कर उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था, इसलिए 1880 में वो बिना लॉ की डिग्री लिए लेकिन राइटिंग के लिए ढेर सारा इंस्पिरेशन लेकर वापस इंडिया आए और उसके बाद उन्होंने कई जॉनर्स में लिखा, जैसे ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएट्री, सॉन्ग्स और कई तरह के आर्ट वर्क्स बनाए। गुरुदेव एक अक्लेम्ड म्यूजिशियन थे क्योंकि बचपन में ही उनके पिताजी ने उन्हें और उनके सिबलिंग्स को म्यूजिक लेसन्स दिलवाए थे और उन्होंने जो सॉन्ग्स लिखे थे और उन्हें कंपोज किया था उसका म्यूजिक में अपना अलग ही जॉनर बन गया जिसे हम रवींद्र संगीत कहते हैं। फिर 1910 में उन्होंने लिखी अपनी वो पोएम जिसके लिए उन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर मिला। उन्होंने लिखी गीतांजलि और 1913 में उसके लिए उन्हें मिला द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज जीतने वाले वो पहले इंडियन थे, पहले नॉन यूरोपियन और लिरिसिस्ट थे। रवींद्रनाथ टैगोर एक नेशनलिस्ट थे, उन्हें इंडिया पर ब्रिटिश रूल पसंद नहीं था लेकिन ब्रिटिश की दी हुई एजुकेशन का कॉन्सेप्ट उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए नोबेल प्राइज के अवॉर्डेड मनी से उन्होंने शांति निकेतन में बनाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल और आर्टिस्टिक एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया। 1915 में महात्मा गांधी उनसे शांति निकेतन में मिले। दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी ने ही उन्हें गुरुदेव का टाइटल पहली बार दिया था। नोबेल मिलने के बाद ब्रिटिश ने उन्हें नाइटहुड से भी ऑनर किया, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद अपना दुख और डिसप्लेजर दिखाने के लिए उन्होंने अपनी नाइटहुड डिनाउंस कर दी। इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कई लोगों के पास अलग अलग तरह के मीन्स थे, लेकिन गुरुदेव का टूल था उनका पेन, जिससे उन्होंने इंडिया और इंडियंस के लिए कई पेट्रियोटिक और इंस्पिरेशनल पोएम्स लिखी। इतना ही नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 3 कंट्रीज के नेशनल एंथम के पीछे उनकी ही कलम की स्याही है। इंडिया और बांग्लादेश के एंथम्स तो उन्होंने लिखे ही हैं, साथ ही श्रीलंका के एंथम के पीछे भी उनकी ही सोच और इंस्पिरेशन है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी लाइफ को अगर हम किसी रिफॉर्म जैसे एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट के नाम कर दें और अपने अटेम्प्ट्स के लिए जो भी पॉसिबल हो करें, जैसे लिटरेचर और आर्ट की हेल्प से रिफॉर्म्स लाना, तो हम जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये थी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लाइफ से कुछ इंस्पिरेशनल बातें। ऐसे और भी इंडियंस के बारे में जानने के लिए सुनिए फेमस इंडियन पर्सनालिटीज ऑल किड्स शुड नो अबाउट पॉडकास्ट के और भी एपिसोड्स।